और ये जब हदीस पढ़ते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने देखा कि पेट में सांप थे या खून की नहर थी, तो मैं इसको प्रैक्टिकली इस तरह सोचती हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और सब मुसलमानों को भी महफूज रखे, हमें हल्का सा शक पड़ जाए कि हमारे घर में एक सांप का बच्चा, उस घर में आराम से बैठेंगे? प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, मेरी दोस्त रहती हैं एक मैरीलैंड में, मैं खुद उनके घर जाके रह चुकी हूँ, कुछ अरसे उनके साथ बात ना हुई और उसके बाद एक दिन उनका फ़ोन आया तो बहुत ही परेशान थी। क्या हुआ? कहने लगी कि मेरी बच्ची ने बेसमेंट में जो एक कमरा था जिसको कॉमनली यूज़ करते हैं, उसमें दीवार के साथ कोई सांप देखा, छोटा सा देखा था, उसके बाद से हम बहुत परेशान हैं। जो पेट कंट्रोल वाले आ चुके, जो भी उन्होंने बुलाना था बुलाया, स्प्रे हो गए, सब हो गए, लेकिन इतना खौफ है कि कोई नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता, कितनी देर लेके बच्चों को बाहर रहीं, फिर कब तक बाहर रहती, फिर आ गईं, और अब भी हाल यह है कि कहती है कि मेरा दिल धड़का रहता है। इस बात ने तो मुझे हिला के रख दिया, एक सांप का बच्चा सामने आ जाए तो क्या चैन आता है? आप सोचिए कि मैं तो उस वक्त हैरान होती हूँ कि जब लोग पहले घर लेते, और मेरे लिए वो बहुत हैरतनाक दिन था जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि फिर बाद में लोग उस घर को फिलअप करने के लिए जो फर्नीचर, कारपेट्स, कर्टन्स लेते हैं वो फिर इंटरेस्ट पे लेते हैं, किसको खाली क्यों छोड़ें, कैसे करें, अच्छा सोफ़ा कोई बात नहीं, आप 200 रुपये देते रहें हर महीने और ये 10 साल में दे दें, ये घन चक्कर है। ज़रा आप एक लम्हे के लिए सोचें कि हम इस चीज़ को कहाँ तक लेके जाएंगे। अल्लाह हलाल से दे सकता है, इतनी कुशाइश है, आप मत लें 6 बेड का घर, आप 2 बेड का ले लें, आप घर न लें आप टाउन हाउस ले लें, टाउन हाउस नहीं लें आप अपार्टमेंट ले लें, ये क्या स्टेटस है? मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो कल्चर है ना, ये ऐसे ही कि जैसे दूसरे के घर के ऊपर आप अपनी नेम प्लेट लगा लें, क्योंकि वो आपका तो होता ही नहीं है। ये भी मैंने किसी के एक एक्सपीरियंस से सीखा, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे तो ऐसे ही हम गए और मिलने लगे और पता चला कि उन्होंने घर लिया है ना, तो मुझे जब उनकी बीवी मिली तो मैंने उन्हें मुबारक दी। मैं हमेशा हर एक को एक ही दुआ देती हूँ, शायद आपको भी फ़ायदा हो ना, मुझे ज़रूरत है किसी से पूछने कि उसने कैसे लिया है, क्यों लिया है, लेकिन मैं ये एक दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इससे भी अच्छा घर जन्नत में दे। तो बाज़ लोग तो इस दुआ को सुन के हिल जाते हैं, तो जब मैंने उनको दुआ दी तो हंसी और थोड़ा सा झींप के कहने लगी, पाकिस्तान में तो घर लेते हैं तो खुशी होती है और यहाँ घर लेते हैं तो फिक्र लग जाता है। मैंने कहा क्यों, कैसे? कहती वो इसलिए कि फिर अब जहन पे बोझ आ गया कि अब हर महीने किस्त देनी है। तो उस बात से मैंने सोचा कि ये आपका तो है ही नहीं है। लिटरली यकीन करें कि लोग $20 भी उनकी जेब में नहीं रहते जब वो ऐसे हालात में आ जाते हैं। ऐसी बहुत अच्छी साथी हमारे अपने बहुत करीब मिलने वालों में, अच्छी भली काम करने वाली, मेरे पास आई, कहने लगी कि शौहर कह रहे हैं घर लेना है तो क्या करें, और इसी तरह ही लेना है कि कुछ लेके बाकी बाद में। मैंने कहा आपको सब पता है? कहती सब पता है, लेकिन पता नहीं कि अभी भी दिल अंदर से कह रहा है कि ये घर छोटा है बड़ा है। काफ़ी वो अपने से झगड़ी, अपने उनको पता था ये मसला, नहीं भी लेना चाहती थी लेकिन अंदर अभी कन्विक्शन नहीं थी, ले लिया घर ले लिया। मुझे क्या था, मैंने तो बात करनी थी, खैर घर ले लिया। उसके बाद यकीन करें 2-3 साल मैंने जब भी उनको मिली देखा, उनके चेहरे से ना वो चमक रही ना वो उनका भोलपन रहा, लड़कपन रहा, खुद भी बीमार मियाँ भी बीमार, और बिल आखिर कहानी क्या थी कि इस घर ने हमें बर्बाद कर दिया। नतीजा क्या है, क्योंकि हमने इसके बाद सुख पाया ही नहीं है, हर वक्त की किस्तें, मियाँ बीमार, व्हाट्स एवर, और अब इस चीज़ को रियलाइज करती थी कि हमें नहीं लेना चाहिए था, और अब क्या करें, अब ले लिया तो अब उसको भुगतना पड़ेगा, अब बेचे कैसे। यानी ये तो मैं बिल्कुल इधर उधर की बातें कर रही हूँ ना, यकीन करें 100 बातों की एक बात है अल्लाह ताला की बातों में कि जिसको आप मानना चाहेंगे वही आपको फ़ायदा देगा। ये इस किताब में एक पेज 230 पे किताब है, कर्ज़ के फ़जाइल और मसाइल, तो इसमें इन्होंने किसी का वाक़या लिखा है, एक बहुत ही शहर का मारूफ शख्स था और वो कैसे करोड़पति से सड़क पे आ गया और उसने अपनी कहानी लिखी है, और कहता है कि आप माने कि ये सब कैसे हुआ, ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के साथ हुआ। अब मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात इस पे भी कर लें, क्योंकि हमने कर्ज की आयतों को भी पढ़ा है कि ये क्रेडिट कार्ड्स और ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके साथ भी कोई हमारा मामला होना चाहिए या जायज़ है कि नहीं जायज़ है। पहली बात आप देखें कि सूद तो एक अपनी जगह पे चीज़ है, आप ये कह लें ना कि सूद के बच्चों के नाम तो लिए ही नहीं, कांपने लगते हैं लोग। दो बच्चों के नाम ले दूं, बहुत लोग कांपेंगे, मेरा ख्याल है अभी ना लें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती है ना जो अभी हमारे दिल ही नहीं इस काबिल हुए कि जिसको बर्दाश्त कर सकें। मतलब मेरे दिल में तो बहुत कुछ है और अभी इतनी और चीज़ें हैं जिसको हम इस मामले में शेयर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस मौके पे कम से कम आप लोग जो यहाँ बैठे हैं और आप अभी तीसरे पारे पे ही हैं, अगर आपको ये बातें सुन के अपने अंदर कोई आ रहा है या कुछ है तो अल्लाह से तौफीक मांगें। इसलिए फिर आपके जहन में सवाल होगा, हम चाहते हैं शौहर नहीं चाहते, तो आज जाती फतवा दे दें कि इस घर को छोड़ें और बाहर सड़क पे चले जाएं। तो देखिए कि किसी बच्चे के हाथ में छुरी होती है ना, तो आप उसे छुरी कैसे छुड़ाते हैं? जोर से खींचेंगे ना तो वो उसका भी हाथ जख्मी करेगी, आपका भी करेगी। एक बच्चा वो टॉफी की मोहब्बत में चूर है, नशा है उसको, वो किसी के बैग से भी खा लेता है लेके, उसको तो टॉफी है, और आप अगर उस वक्त उसको चोरी का दर्स दें और कहें कि ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इलाज क्या है कि उसके हाथ में कोई दूसरी चीज पकड़ा दे। आप बच्चे से कुछ छुड़ाना चाहते हैं ना, छुरी है ना, कहते हाय बच्चे ने क्या किया, अक्लमंद माँ क्या करेगी, एक खाली रैपर भी होगा ना टॉफी का उसको वो दिखाएगी, वो जल्दी से आएगा उसको पकड़ेगा और ये छुरी गिर जाएगी। लोगों को इससे भी बड़ी चीज दिखाए, वो जन्नत के बाग और वो जन्नत के घर और वो चीज़ें जो बंदे को खैर देती हैं। और एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि लोग ये सोचते हैं कि सामान्य तईशात यानी लग्जरियस चीज़ें खरीदने से राहत मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। राहत देने वाली, खुशी देने वाली चीज़ों से खुशी नहीं आती। आपके घर में नरम गद्दा मौजूद है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते आप। आप कीमती खाने खरीद सकते हैं, आप भूख नहीं खरीद सकते। ये धोखा है कि बहुत बड़ा घर होगा तो बहुत खुश होंगे, बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो बहुत खुश होंगे, वो लोग और दुखी दिखते हैं। बाज़ औरतों ने सर से पांव तक अपने आप को जेवर में लादा होता है और वो आंसुओं से रोती होती हैं, क्या कि शौहर ही नहीं खुश हमसे, ताल्लुकात ही नहीं शौहर बीवी के अच्छे। इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। अगर देखे अल्लाह ने हर चीज़ का हल दिया। बाज़ लोग कहते हैं कि चलें भाई किराए पे घर लेते हैं तो फिर वो तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो ये जो किस्त दे रहे हैं कुछ हमें मिल जाएगा ना, वो कब मिलेगा और किस कीमत पे मिलेगा? आप इसको सोचें कि बिलफर्ज कोई कुछ नहीं लेता, आप कहते हैं भाई हम अपनी जान छुड़ाते हैं आराम से, अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने जो हमारी हैसियत है उतने में हम घर ले कर किराए पर रह लेते हैं, ठीक है ना, बिलफर्ज कोई लाइबिलिटी तो नहीं रहेगी ना आपके ऊपर। अल्लाह ताला चाहे, इसका कई तरीके हो सकते हैं, आप 5-6 बहन भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, सब घर लेना चाहते हैं, आपने भी 20 जमा किया हुआ है, आपने 30 किया हुआ है, आपने 40 किया हुआ है, 20, और सब इस तैयारी में कि हमें 10 घर मिलें तो हम सारे 10 वो घर ले लें। इसका इलाज क्या है कि अगर वाकई को लेना चाहते हैं ना, आप सब बैठें और मिल के बात करें कि क्या तरीकाकार किया जाए। चलो सबकी जमा मनी जमा करो, जब सबकी मनी जमा होती है ना तो वो कितनी बनती है कि उससे 10 घर तो नहीं, 2 आ जाते हैं। ये जैसे कमेटी डालते हैं ना, उस तरीके की एक चीज़ है। फिर आप क्या कहते हैं कि ठीक है ये जो 2 घर आ सकते हैं कौन पहले लेना चाहता है? मिसाल है आप कहते हैं पहले मुझे दे दें, आप कहती हैं मुझे दे दें, अब हम 8 लोग बाकी मौजूद हैं, हम क्या करेंगे? जो अपनी जमाशुदा मनी है ना आपको कर्ज दे देंगे। अब 2 घर हम खरीदते हैं, हम 10 लोग हैं, हम 10 नहीं 2 घर खरीदेंगे। अब एक घर में आप चली गई, एक घर में आप चली गई, 8 लोगों का पैसा उसमें लगा है, उस घर की मार्केट वैल्यू देखी जा सकती है कि इतना घर किराए पे कितने का आता है। अब वो घर असल में इस वक्त 2 का नहीं है, उसके 10 पार्टनर हैं, ठीक है, जिन 10 में से 2 उसमें रह रहे हैं, उस घर को देखा जाएगा कि इसका मंथ का किराया मिसाल है कि 10,000 या 20,000 जो भी आपकी अमाउंट है, जो लोग अपना पैसा उसमें लगा चुके हैं ना आप उनको किराया देंगे। पूरी एक इसके अंदर यानी एक बहुत अच्छी कोशिश की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करके कुछ ब्रदर्स थे जिन्होंने कहा कि हमने इंटरेस्ट फ्री घर लेने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मिल मिल के एक एक को घर ले दिया। फिर इतने में कुछ ना कुछ और जमा हो जाता है ना तो कुछ और लोग मिल जाते हैं, तो कम अज़ कम कुछ लोग तो बच सकते हैं ना इस चीज़ से। और फिर बात वही है कि ये सारी बातें दूर की हैं, अब इससे पीछे की बात है कि रियलाइजेशन तो हो, हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करके देखें तो फिर हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने ये कैसे किया। देखिए यूनिटी में बरकत है, इत्तफाक में बरकत होती है, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं तो बड़ी होते हैं। पहले अपने प्लान्स छोटे करें, बहुत बड़ी चीज़ को छोटा कर लें और इधर से अपनी कोशिशों को सही रुख पे रखें, बहुत कुछ हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब यही आयतें हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ी थी, आरकेपी क्लास, रब का पैगाम मेरे नाम, बहुत कुछ हुआ था। लोग माइक पे आके इतना रोए धोए थे कि यानी अब हम आगे क्या करें। तो उस वक्त हमने सोचा था कि कोई प्रैक्टिकल चीज़ करें, करना चाहिए। तो वो उस वक्त वो चीज़ हमने की थी, आखिरा बैंक उसका नाम रखा हुआ है, अभी भी वेबसाइट पर उसका लिंक मौजूद है, कि कुछ करते। कुछ लोग जैसे अब ये कर्ज़ की हम खूबियाँ पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि कर्ज़ देने का कितना अजर है। आप जब तक वो एक मुद्दत होती है उसके दिन, हर दिन का अजर है एक उतना देने का, और उसके बाद दुगना देने का अजर है। तो इस तरह क्या करें। तो उसमें फिर हमने ये सोचा था, यानी मैं आपके से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज हम यहाँ बात करते हैं, कल अल्लाह हमारे यहाँ वसाइल बना दें, हो सकता है ना। ये तो लोगों के आपस में मिलने की बात है और फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करने की बात है। तो सिंपल बात यह है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, आज ना करें, बात तो कर दें। अल्लाह ताला पहला कदम दूसरा कदम आगे कर सकता है। कि मिसाल है कि हम जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह की तौफीक से हम सोचते हैं कि हमने लोगों के कर्जे चुकवाने हैं। आपको बताए कि 80 से 90% लोग जो यानी पहले ही ऐसे मामला कर लेते हैं ना, बाद में वो फिर कर्जों में पिसे होते हैं और वो ले नहीं पाते। क्रेडिट कार्ड्स के बिल देख लें, घरों के लोन देख लें, सो ऑन। इस वक्त बच्चा बच्चा जिसको कहना चाहिए कर्ज के अंदर मुब्तला है। तो उसके लिए क्या है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं जमा किए, मैं आपके पास कुछ पैसे हैं, वो मेरे ही हैं। पैसे किसी को दे तो बंदा समझता चले गए। तो आप कहते हैं अच्छा मेरे पास भी पड़े हैं ना, ऐसा करते हैं कि इसको हम आखिरा बैंक में डालते हैं, मेरे नाम से लिख लिए गए, आपके पास कुछ पैसे हैं आप उसमें डालती हैं कुछ भी किसी बेस पे। अब वो एक बिग अमाउंट होती है, फिर हम अपने ही लोगों में, और हमने इसको जब लॉन्ग वे पे किया तो वो तो इतने लोग उसमें आ गए और लोगों ने तो यानी इतने बड़े बड़े मुतालबे किए कि हम भी हिल गए कि इतने तो हम नहीं दे सकते। फिर हमने उसको एंड पे स्टूडेंट्स तक कर दिया कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और वो बंदा जो तौबा करना चाहता है, ये नहीं कि इधर से आप हमसे पैसे लेके कर्ज माफ कराएं, लोन फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन ले लें और उधर से और कार्ड्स पे चढ़ाते रहें, यानी इसकी काफ़ी चीज़ें शरारत करके। तो उसके अंदर पूरा वो बंदा चाहिए जो इस डीलिंग को जानता है। अगर आप सब में से कोई, आप, आपके हस्बैंड, आपके भाई, कोई इन चीज़ों को डील करता है, इस पर बात हो सकती है। पहले इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि एक जगह हो जिनको काम करना आता हो, जो आगे इसको देखें, क्योंकि आपको तो मनी मैटर्स में बहुत सारी बाद में पेचीदगियाँ आती हैं। कहीं सब जमा करें, किसी एक का कर्जा उतार दे, उनका वो इंटरेस्ट वाला खत्म तो हो मामला। वो तो एक ऐसी चीज है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। यकीन करें मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी प्यारी स्टूडेंट है, तो वो नाम नहीं लेती, एक ऐसी मुल्क है जिनका नाम ले रही हूँ, एशियन कंट्री, उसमें गई हुई थी। कहती मैं अपने घर में थी, नेबर में से किसी के रोने की आवाज आई, बाद में पता क्या चला कि उस औरत के दरवाजे पे कोई शख्स आया हुआ है और दरवाजा पीट रहा है कि इस औरत ने उससे कुछ कर्जा लिया था, और वो आदमी सूद पे कर्ज देता है, और उस मुल्क में आम है ये चीज़, रिवाज है वहाँ का। उस औरत ने जितना लिया था वो उससे कई गुना ज्यादा दे चुकी है, लेकिन वो सूद इतना चढ़ता जा रहा है कि वो खत्म नहीं कभी होता ना। ये तो बस एक ऐसे जैसे पीछे से आपने पानी की टैप खोल दी है ना, आप जो देते हैं अगले महीने उसमें और होता है। तो वो अब औरत से एक तकाजा कर रहा है, तो इस औरत के पास पैसे नहीं, और वो कहता है कि आज मैं तुमसे लेके जाऊंगा। कहती कि मैंने अपने शौहर से कहा कि आप देखें क्या मामला है, यानी इतनी गुर्बत है। वो कहती है कि जब सारी कैलकुलेशंस की ना, कि वो औरत उसका सारा ही दे दे ताकि ये हर रोज की बात खत्म हो, तो उस मुल्क के कोई 2,000 रुपये बने थे। और कहती कि उस्ताजा सिर्फ $20 बने थे हमारी करेंसी में। वो मेरे मियाँ ने, हमने कहा ये पकड़ो तुम अभी लो, हमने उस आदमी को दिए कि देखो ये पैसे तुम लो, तुम्हारा हिसाब खत्म है, आइंदा इसके दरवाजे पे ना आना। कहती है कि वो औरत आके तो यूं हमारे पाँव में गिर गिर के रो रही थी कि आपसे बड़ा कोई मोहसिन नहीं है। और कहने लगी ये कहानी नहीं है, जहाँ की ये बात कर रही हूँ घर घर की ये कहानी है। गरीबों ने सूद कर्जे लिए हुए हैं और वो अब इतने चढ़ चुके हैं कि वो नस्ल दर नस्ल चले गए हैं, और वो हमारी हम करेंसीज में करें तो वो कुछ भी नहीं बनते, शायद एक दो वक्त का खाना पीना उतने में हो जितने में, और लोगों की इज्जतें जो है इसकी वजह से बर्बाद हो रही हैं। क्यों? कि जिस चीज़ में ऐसी चीज़ आ जाएगी वो कभी भी उस इंसान के लिए बेहतर नहीं करेगी बात। और अरबी में यानी इसकी तारीफ भी यही की कि कुल्लु कर्दिन जर्र नफा हो, हर वो कर्ज जो अपने साथ नफा खींचे। अगर मैंने किसी को 1,000 दिया ना, तो मैं हकदार हूं कि मैं 1,000 ही वापस लूं। अगर मैंने 1,010 रुपये लिए ना, तो वो 10 रुपये सूद के, और सूद में क्या होता है कि उसके इक्वलेंट कुछ मेहनत नहीं होती। ये जो पीछे हमने बात पढ़ी ना कि तिजारत और सूद जो बराबर है, इसको मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जैसे एक शख्स है, उसने कोई चीज़ खरीदी, आप कोई भी मिसाल ले लें कि आपके पास कोई भी चीज़ जो पहुंचती है घर में खाने की, कोई प्रैक्टिकल मिसाल देना चाह रही हूँ कि जिसको लोग एक से दूसरी जाते जाते खरीदते हैं, जो हम ग्रोसरी खरीदते हैं। मिसाल है कि आप चावल लेते हैं, कितने रुपए किलो आते हैं यहाँ चावल? 15 करोन का 1 किलो चावल आते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि ये आपको 15 करोन के मिले ना, आपसे पीछे कितने लोग हैं? जिस दुकान से आप लेते हैं, पहली आप हैं, दूसरा वो है, फिर उस शख्स ने किसी होलसेलर से मंगाए होंगे ना, उसने किसी इम्पोर्टर से या बाहर से एक्सपोर्टर से मंगाए होंगे ना, फिर वहाँ से वो आपके अपने मुल्क की किसी ऐसी जगह से लिए होंगे जिन्होंने किसानों से खरीदे होंगे, यानी 8-10 हाथ लगे ना। जब पीछे किसान के पास चले जाएंगे तो हो सकता है कि ये 20 रुपए किलो हो चुके होंगे, जो आपको 15 गुना या 14-15 गुना महंगे मिले ना। ये जायज़ है, हर बंदे ने कुछ मेहनत की, इधर से उठाया, उधर रखा, उधर से रखा, इधर से रखा। आपने किसी से एक चीज़ खरीद ली 10 की, अब आपने खरीदी, उसको रखा अपने पास, आप उसको जाके 12 की बेच देते हैं, अलाउ है, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने उठाया, आपने उसको रखा। लेकिन अगर इसके एक बरक्स, अगर आप किसी को 15 करोन अगर पैसे देते हैं और कल कहें कि जब मुझे वापस करो तो ये 20 करो, तो आपकी तो उसमें कोई मेहनत नहीं गई ना, तो उसमें रिस्क भी नहीं होता। आपने चावल खरीद के रखे हुए थे कि चलो आज 10 के लिए हैं, मैं 15 के बेच दूंगी, या मेरे 15, मेरा 5 नफा होगा। हो सकता है बारिश में भीग जाए, सारी खराब हो जाए, नुकसान हो सकता था ना, चोरी हो जाए, कोई वट एवर जो भी मामला हो। लेकिन जब आपने पैसे के बदले पैसा कमाया ना, ये अलाउ नहीं है। और यहाँ एक छोटी सी बात कर दूं जो मतलब रेलेवेंट हो कि ना हो, अक्सर जगहों पे ये होता है कि साल है कि ये इदारा है, आपकी कुछ फीस है यहाँ आने की, एक्सपेंसेस की फीस है ऑफ कोर्स। बस जगहों पे क्या होता है कि जब आप 1 वीक नहीं देते तो लेट फीस का नाम सुना है आपने? लेट फीस, आप 1 वीक ना दें तो आपको 25 करोन बढ़ जाएंगे हर दिन, 5 5। आपको पता है कि ये क्या है? ये भी इसी मद में आता है, यानी हमने इस पे कभी इस तरह नहीं सोचा था, और अल्हम्दुलिल्लाह के इस तरह से जब भी ये किसी से बात होती है तो एक ऐसा मौका बना कि उस वक्त इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह किसी आलिम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखें, मिसाल है कि किसी जगह की फीस 100 रुपये है, तो 100 रुपये तो महीने के एंड पे आपने देने ही देने हैं ना। आप कहते हैं 1 वीक बढ़ गया तो अब आपने उसको 110 रुपये देने हैं, ये मुद्दत के साथ 10 रुपये बढ़े हैं ना, उसने उस वीक भी नहीं दिए। आप कहते हैं अब अगले वीक चलेंगे, 10 और दे दो, चलो 15 और दे दो, तो आपको 2 वीक गुजरने के बाद 125 देने हैं। तो ये 25, जहाँ टाइम की वैल्यू आ जाती है ना, जब ये बात सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग कहते हैं कि लोग इसके बगैर कोई जगह चलती नहीं, लोग ऑर्गेनाइज ही नहीं होते, और लोग नहीं देते, लोग ढीले हो जाते हैं, जब लोगों को एक भी ज़्यादा देना पड़े तो वो दे देते हैं वक्त पे। लेकिन बस अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कहाँ तक गुंजाइश है, लेकिन उसके बाद दिल ही नहीं ठुका। हमने कहा कि ये नहीं कर सकते, जब शक आ गया तो उसको छोड़ दें, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना, बंदे की अपनी इज्जत और अपनी नज़रों में भी तो इज्जत होती है। जी, आप देखिए कि ये सब कुछ कहाँ ख़त्म होगा, जहाँ दिलों में कनात आएगी। और कनात कब आती है? जब अल्लाह का तकवा आता है, जब इस दुनिया पे आप राजी रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं जगह बहुत छोटी होती है, मिसाल है कि आप घर देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको भाई 2-3 बेड का घर मिल जाए, ये है वो है, जब आप घर देखते हैं तो वो 2-3 का नहीं, वो 1 या 2 बेड का घर है। एक सोच के कि हाय हमें तो 3 बेड का था, ये तो छोटा है, और देखो मेरी बहन भी तो इतने में रहती है और फुलाम भी तो इतने में रहता है। उस वक्त एक बंदा जो छोटी जगह पे खुश है वो क्या सोचेगा? इससे भी छोटी जगह हो सकती है कोई, सिर्फ आप अपनी सोच बदलें। मैंने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा, मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाज के बाथरूम से ये बाथरूम बड़ा है। आप बताइए, आप किसी को ये कहते हैं कि आप अपने घर के बाहर इतना पत्थर लगा लें, आप और ऊंची छत कर लें, फिर आप बाथरूम के अंदर टब भी लगवा लें, फिर आप उसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी बना लें, फिर आप खड़े होकर शावर भी लें। बाज़ लोगों के यानी इन चीज़ों में इतनी चॉइसेस होती हैं कि मेरा ख्याल है कि बंदा चेंज ही नहीं कर सकता कि मैं कौन सी चॉइस को इस्तेमाल करूँ। ये क्या है, इसकी कोई हद नहीं है। ये जो चीज़ ख़त्म कब होगी? जब हम रियलिस्टिक होंगे, हम कनात करेंगे, हम अपनी हैसियत को पहचानेंगे, क्या मेरा अल्लाह की निगाहों में इतना मुकाम है कि मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ूं, और मेरा ये औकात है, मेरा ये मुकाम है कि नहीं है। जब तक इस चीज़ से नहीं जोड़े, और ये आती है किताब के साथ। अब आप कह रहे हैं कि करंटली मिसाल है कि ये चीज़ चल रही है हमारे खानदानों में, घरों में, सबसे पहली चीज़ उस दरवाजे को खटकाए। जो दरवाजे हमसे नहीं खुलते ना, वो अल्लाह खोल देता है। रोएं, तड़पें, बेचैन हो, हम जहाँ पहुँच चुके हैं ना, अब कदम कदम पीछे आना पड़ेगा। उसके लिए वही बात जो फलकुम रऊसुम वालिकुम वाली बात है, ऐसे बच्चों के साथ बैठें, बात करें, उनकी दिल सोजी करें, डायरेक्ट कभी हिट ना करें। बस आज जैसे सुन के जा रहे हैं, और आज जाती शोहरों के सर पे सवार हो जाएं कि ये गलत वो गलत। मैं आप में से किसी को इस रिकमेंड नहीं करूंगी, बाकी आपके अपने ओन पे है, जिसके जैसे ताल्लुकात होते हैं वैसी बात करते हैं। पहले आज अपने दिल से पूछें कि आपके दिल में इस चीज़ की वहशत आ गई है, आपका दम घुटने लग गए, आपके सोफे के नीचे सांप का बच्चा हो तो आप उस पर नहीं बैठ सकते, वो पूरा सोफा ही जो सांपों से बना उस पर कौन बैठ सकता है। और जिसको अपनी कब्र याद है वो तड़पेगा। इसके लिए हिकमत के साथ, तरीके के साथ, पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर से ये चीज़ें कम करें, अपनी ज़रूरियात कम करें। देखिए, कोई मर्द भी मैं नहीं मानती कि कितना भी शौकीन मिजाज क्यों ना हो, अच्छा घर बनाने का, अच्छे कपड़ों का, खाने पीने का, लेकिन जब तक उसकी बीवी उसको एंटरटेन नहीं करती ना, उस पर वेलकम नहीं करती ना, वो इंजॉय नहीं करता। मिसाल दे रही हूँ कि एक शौहर है, गाड़ी लेके आए, आपको पता है कि इसमें सही चीज़ नहीं, अब इसमें जनरल बात है, कमाई ठीक नहीं या सो ऑन। अब जो बीवी उस गाड़ी को देख के कहेगी, हाय कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, वो कहेंगे देखा इसीलिए तो लाया हूँ। बिलफर्ज मैं अपना अमल बताती हूँ, वही बेहतर होता है, दूसरों का क्या बताना है। किसी के बारे में कभी कुरेद नहीं की, और ज़रूरत ही नहीं कौन कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से ले रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन हुस्नुल इस्लाम तर्कुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम का हुसन क्या है, हर उस चीज़ से बेताल्लुक हो जाए जिसमें उसका कोई मतलब नहीं है, कोई क्या करता है नहीं करता। लेकिन कुछ लोग सरे हम खुद ही मशवरा भी करते हैं और ख़ुद भी बता देते हैं कि ये चीज़ हमने इस तरह ली, या हमारा ये बिजनेस है या वो है। मतलब बहुत लोग इस तरह, यानी एक ट्रेडिशन कह लें कि जब लोग नया घर लेते हैं ना, तो उसके बाद दर ज़रूर कराते हैं। अच्छा, हम लोगों को ना इसलिए भी बहुत सारे हालात पता चल जाते हैं कि लोगों ने एक ट्रेडिशन रखा हुआ है, नया घर लिया है जी, दर्स रखाना है, सबसे पहले आपको लेके जाना है। भाई हम क्या करेंगे, नहीं वहाँ जाके ज़रा कुछ कुरान शुरान पढ़ें, दुआ कराएंगे, फिर होगा, तो हमारी दुआ से क्या होगा। बाहर लोग जो भी समझते हैं ना, तो हाउस वार्मिंग से पहले एक दर्स रखते हैं और साफ बताते हैं कि हमने नया घर लिया और उसके बाद ये और वो है ना। तो अगर मुझे पता होता ना कि ये इस तरीके की चीज़ें, मैंने कभी भी उनको मुबारक नहीं दी, कभी तारीफ नहीं की। ये चीज़ें जो है ना, ये सोशल बाइकॉट से ख़त्म होंगी। मिसाल है कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स है, चलें आप जनरल बात कर लें कि एक औरत है, उसने एक ऐसा लिबास पहना हुआ है जिसमें सतर के तकाजे नहीं पूरे हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, आप उसकी तारीफ़ क्यों करें। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी शादी में हम इन्वाइटेड थे, बहुत ही मेरी क्लोज स्टूडेंट थी, तो उन्होंने बहुत इंसिस किया, शहर की बहुत बड़े घर की थी और वट एवर, बेटी की शादी थी, सुना कि आपको ज़रूर आना है, और हम है तो वैसे औरतें मर्द हैं, लेकिन हम आपके लिए अलग रखेंगे दिस एंड दैट। मैंने कहा मुझे कोई मसला नहीं, शर्त यही है कि बस वहाँ को म्यूज़िक ना हो, तो मैं अपने आप को छुपा लूँगी। मैं बिल्कुल गई जैसे मैंने जाना था, निकाब में रही, मैं सबसे मिली, सब मेरे मिलने वाले थे, शहर के अक्सर लोग सब थे, क्योंकि लोग बाद दफ़ा फिर शर्मिंदा होकर कोने में बैठ जाते हैं ना, तो हमें तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, बस हमें देख के दूसरे खुद हो जाते थे। तो इतने में क्या हुआ कि मैं खड़ी थी, तो करीबी थी वहाँ, तो एक बाहर से खातून आई ना, यकीन करें कि ये पहचान मुश्किल हो जाती है ना बाज़ दफ़ा कि ये वाकई मुसलमान है कि नहीं, और अगर आप उनको मुस्लिम गैदरिंग में ना देखें तो आप पहचाने ना। तो मेरे दिल में एकदम हूक उठी उनके बारे में, तकलीफ़ हुई मुझे बहुत ज़्यादा। अभी मैं इसी तकलीफ़ में थी ना, तो जूं ही वो आई अंदर, तो बाकी लोग जो अंदर, उनमें से एक उनको देखे थी, मतलब वो जो स्टाइल है मुझे नहीं आता, लेकिन उन्होंने उसकी हाय सो डैशिंग वैशिंग उसकी इतनी तारीफ़ की, मुझे उसके हाल से इस पे ज़्यादा दुख हुआ कि काश ये उसकी तारीफ़ ना करती, सिर्फ ये जुमला सुनने के लिए उसने इतनी मेहनत की है। यकीन करें अगर हम लोगों की तारीफ़ करना छोड़ दें ना गलत कामों पे, तो आधे से ज़्यादा करप्शन और ये पंप एंड शो ख़त्म हो जाए। लोग सिर्फ ये तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, लोग आपको बुला रहे हैं, कर रहे हैं, लोग क्यों लेते हैं, ज़रा आप सोचें कि ये जो लग्जरियस चीज़ें वो अक्सर क्यों ली जाती हैं कि लोगों पे रोब आए। तो आप मत आए किसी के रोब में, आप जाके देखें अच्छा कुर्सी कैसी है, अच्छा मेज़ कैसा है, अच्छा ये डिनर कहाँ से लिया है। मैंने अक्सर औरतों को छिछोरी हरकतें करते देखा है, अच्छा ये इतने का, अच्छा ये कहाँ से लाई थी, अच्छा ये कहाँ से लिया, कि छोटी रखें अपनी। अल्लाह ताला कहता है ला तमुद्दन आई नई का, इलामा मत्तवा नबी, कुछ इसके आगे मफहूम यह है कि लोगों की चीज़ों को देख के आंखें ना खोल लिया करो, कम तारीफ करें लोगों की, उनको जज्बाती टॉर्चर दें, वो कुछ भी कर लें अगर आप देखें ना ये अल्लाह की नाफरमानी का है, ये एक जनरल रूल है, जहां किसी को अल्लाह की नाफरमानी से कोई चीज़ लेते देते देखे ना, ना मैंने उसकी तारीफ करनी है, बेनियाज रहें ना तनकीद करें, बाद लोग तो वहीं शुरू हो जाते हैं, अल्लाह का खौफ ही नहीं लोगों को, ये ना करें क्योंकि वो उस वक्त आपका सर फाड़ देंगे कि आप वहां जाके ये दर्स सुनाने बैठ जाएं, ये भी दुरुस्त नहीं है। हिकमत के साथ रहें, जितना आप लोगों को ये एहसास दिलाएंगे ना कि आप हमें तभी अच्छे लगते हैं जब आप अल्लाह की मानते हैं, कोई शौहर ऐसा नहीं करेगा। जिनका मैंने जिक्र किया कहती हैं कि लिटरली मेरे शौहर कहते थे कि ये तुम माँ बेटियां अगर मुझे मजबूर ना करती तो मैंने क्या करना था, मैं तो पहले जॉब करने वाला बंदा हूँ, मैं तो अपनी जान भी लेके ये घर लिया तुम लोगों के लिए, ये तुम माँ बेटियों ने मुझे डाला है। फिर बाज़ औरतें मियाँ का ईमान इस तरह ख़राब करती हैं, बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, अपार्टमेंट में रहेंगे तो रिश्ते भी ऐसे आएंगे, बड़े घर में जाओ तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे, कई कहानी है। सारी बातें कब समझ आएंगी, जब एक बंदे का दिल मान जाएगा। आज की जितनी गुफ्तगू है ना, इसमें से अगर आप सब कुछ भी भूल जाएं, बस एक चीज़ अपने लिए लेके जाएं कि आज के बाद मैंने अपने बारे में इस नुक्ते नज़र से सोचना शुरू करना है, तलब पैदा करें, और जहाँ किसी को लगता है कि ये बात मैं अच्छी तरह नहीं कर सकती, इस क्लासरूम के बाहर वालों से मत बात करें, ये उनके लेवल की बात नहीं है, ये आपकी है। और ये बात कब समझ आती है, जब आप इस क्लासरूम में आके बैठते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, आजिज़ बनते हैं, ये बात ड्राइंग रूमों में बैठ के नहीं समझ आती, ये उन चीज़ों के बीच में रह के कभी समझ नहीं आएगी। एक नतीजा निकल जाता है, वो कहते हैं आराम से बैठ जाओ, अब तनकीद शुरू हो गए हो, अब तुम लोग ये हो गए, अब क्या हम कुछ ना करें। इसलिए कच्ची पक्की बात, आपको पता है कि अधूरा सच जो होता है ना, वो झूठ से भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हम यहाँ से अधूरी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं ना, उसका ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो प्लीज़ इस मौजू पे अभी आप ख़ुद अपने आप को ज़्यादा फ़ायदा दें, और अल्लाह ने चाहा तो जहाँ आगे बात आएगी फिर कुछ और बातें जो आपके नसीब की होंगी, अल्लाह ताला गलतियों की इसलाह फरमाए, और हम सबको अपने आप को हर दिन मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। बार बार मैं लफ्ज़ वही बोल रही हूँ कि कार्ड्स की बात बीच में आ रही थी, तो क्रेडिट कार्ड्स का लफ्ज़, क्योंकि ये आपका हक बनता है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्रेडिट कार्ड्स के बारे में क्या होता है। पहली बात है, ये एक बुक है बहुत अच्छी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि आपको पढ़ा ही दूँ किसी मौके पर पूरी, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, इन्होंने इन चीज़ों को बयान किया। तो क्रेडिट कार्ड जो फी जमाना चलते हैं, उसकी दो तीन मुख्तलिफ किस्में होती हैं। डेबिट कार्ड होता है जिसमें आप ही के अपने अकाउंट में से मनी जाती है, ना आप लेते हैं ना देते हैं, जितने आपके पैसे हैं बैंक में उसको आपका बैंक उसी वक्त काट देता है। ये ऐसे ही जैसे कैश ना रखें अपने पास, आप कार्ड रख लें चेकबुक की तरह। इसमें तो इंशाल्लाह ताला कोई कबाहत नहीं होगी, अगर इसमें कोई और बारीक बात नहीं है। दूसरी चीज़ होती है जिसको आप चार्ज कार्ड कहते हैं या क्रेडिट कार्ड, इन दोनों में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, यानी नाम कुछ भी हो। दूसरा कार्ड क्या होता है कि जिसमें आप कुछ मनी आपके पास अलाउ होती है, बैंक आपके ओन पे देता है और मंथ के एंड पे आपको बिल देता है, ठीक है। अगर आप उस एक महीने की मुद्दत के अंदर उनको पे कर देते हैं जब बिल आता है, तो इंटरेस्ट नहीं पड़ता। और दूसरी सूरज यह है कि जब आप एक भी दिन ऊपर होते हैं और वो चाहते हैं खुशी से कि आप ऊपर करें, उनका बिजनेस ही उन लोगों से चलता है, इसमें रुख्सत का पहलू तो निकल आता है कि ठीक है आपने जब लिया उसमें एक पैसा भी ऊपर ना दें, आपने दिया। लेकिन अगर इसमें भी कोई हिडन फीस है, मसलन उस कार्ड को खरीदने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, बस एक जेन में रख लें कि बैंक आपको कर्ज दे रहा है, आपने जो भी यहाँ के कोई स्टोर है वहाँ से कुछ बाय किया, क्रेडिट कार्ड चार्ज कराए, आपको कुछ नहीं मिला लेकिन बैंक ने आपके उन पे दे दिया, ठीक है। अब जब आप अपने तौर पे लेंगे तो आप एक महीने के बाद दे रहे हैं कि बैंक ने आपको कर्ज दिया है। इस कर्ज के इवन कोई जाहरी या छुपी हुई कीमत नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन तीसरी चीज़ जिस कार्ड में ये होता है कि जूँ ही आप चार्ज करते हैं, बैंक उस दिन से आपका यानी उस पे प्रॉफिट जो इंटरेस्ट के तौर पे लेने चाहता है, तो वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यकीन करें ये घन चक्कर है, और अब अल्लाह माफ़ करे हमारे अपने मुल्कों में इसको इतना फैलाया जा रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है क्या ज़रूरत है आपको गमज़दा होने की, आप अपनी बेटी की शादी पूरे शौक से करें, अरमान पूरे करें, और नीचे आप कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, आए हमसे लोन ले, बड़ा घर दिखाया हुआ है आपके ख्वाबों का घर मिल जाएगा, आए हमसे लोन ले। यानी ये एक ऐसा ट्रैप है کہ جس کے اندر بندہ آتا ہے تو خواہشوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، اور یہ راستہ کھولتا ہے انسان کو اس چیز میں جانے کا. اور بعض لوگ پھر اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایسا پھنستے ہیں. یہ شخص جن کی کہانی، وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میرے پاس 25 کارڈ تھے اور ایک کارڈ کا قرضہ دوسرے کارڈ سے چکاتا تھا، اور جب پھنسا تو 25 کی 25 نے آ کے قبضہ ایسا کیا کہ جو ایسٹس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور بیوی کے ساتھ لڑائی شڑائی شروع ہو گئی، بیوی نے طلاق لے لی. اور کہتے ہیں کہ وہ رات میں نے باہر پارک کے بینچ پہ گزاری. ایک دن کروڑ پتی ہے اور اس کے کچھ دن کے اندر وہ روڈ پہ آ چکا ہے. یہ ساری سوغاتیں کیا ہوتی ہیں؟ آرٹیفیشل زندگی کی ہوتی ہیں. آج بھی جہاں بھی آپ کو فلکسویشن دکھتا ہے، آج تو مارکیٹ اتنی تھی آج گر گئی. کسی ملک کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ ایک وقت یہ تھا کہ یہاں ٹاور کا ٹی بولتے تھے ابھی لوگ، تو پورا ٹاور بک ہو چکا ہوتا تھا. اب وہ کہاں تھا کیا تھا آپ چھوڑ دیں. ایسے لوگ آ کے بیچتے تھے، کہتے تھے کہ نیچے کھڑے ہو کے، فلور بہت اونچی اونچی بلڈنگ تھی، 30-40 فلور، نیچے سے اوپر فلور تک پہنچنے میں لفٹوں میں 10-10 سودے ہو جاتے تھے بروکرز کے. لوگ اس طرح ٹوٹ کے پڑتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے یہ آج اگر اتنے کا لیا ہے تو کل کتنے کا بیچنا ہے. اور جو لوگ انویسٹرز تھے انہوں نے ادھر سے لیا، نفع ملا ادھر دیا، کروڑوں کمائے، اور ایک ہفتے کے اندر وہ سب نیچے کا نیچا گرا. جو پچھلے سال کی کمائی تھی وہ ساری اسی میں ڈوب گئی. یعنی یہ آرٹیفیشل قسم کا فلکسویشن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.